मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। एफईआईएस के 11 नवंबर 2019 के आज के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही उन तीन मित्रों का भी स्वागत करता हूं जिन्होंने एकेडमी की 15 मार्च से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं प्रभात कुमार मुजफ्फरपुर बिहार, सागर बी पटेल सूरत गुजरात और प्रिंस कुमार साकेत रीवा मध्य प्रदेश से। फ्रेंड्स एक सूचना है और यह सूचना उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी हमारे 11वें बैच में आए हुए थे। 11वें बैच के स्टूडेंट को सभी नोट्स भेज दिए गए हैं। आप सब अपने अपने ईमेल को चेक कर लें। जो क्लास नोट्स आपको भेजे जाते हैं वो भेज दिए गए हैं। यह आप सबके लिए सूचना है। आज मुख्य विषय के तहत मैं किस विषय पर बात करने जा रहा हूंगा शायद आपको इसका बहुत अच्छी तरह से अंदाजा होगा और आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। मैं उसी विषय पर आज बात करने जा रहा हूं लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। देख आप महाराष्ट्र की राजनीति परिदृश्य को देख रहे होंगे। आपको ध्यान होगा कि 3-4 दिन पहले मैंने महाराष्ट्र की राजनीतिक जो स्थिति बन गई है उस पर थोड़ी सी चर्चा की थी। यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा इशारा किया था कि अब क्या हाल हो सकते हैं। आपने देखा कि जो गवर्नर हैं उन्होंने जो सबसे बड़ी पार्टी है उसे सबसे पहले सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। गवर्नर को इसलिए आमंत्रित करना पड़ा क्योंकि कोई भी पार्टी अपनी तरफ से जाकर के गवर्नर के पास दावा पेश नहीं कर सकी कि हम सरकार बनाएंगे। अब गवर्नर के पास एक ही दो रास्ते थे कि या तो वो सरकार बनाने के लिए पार्टी को आमंत्रित करे या फिर सीधे सीधे रिपोर्ट भेज दे कि यहां सरकार बनाने की स्थिति नहीं है, संवैधानिक आप यूं तो कह लीजिए कि ब्रेकडाउन जैसी स्थिति है तो यहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। लेकिन ये जो कदम उठाया गया यह वाकई बहुत सही कदम है क्योंकि लोकतंत्र में अगर चुनाव हुए हैं और कोई पार्टी अपनी तरफ से आकर के ये नहीं कह पा रही है कि हम सरकार बनाएंगे तो कम से कम गवर्नर एक अपने विवेक से एक बार जो पार्टियां हैं उन्हें मौका तो दे ही सकते हैं और यही उन्होंने किया। देखिए चूंकि सिविल सर्विस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए मैं इन घटनाओं के पीछे की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं। तो जब विवेक की बात आती है तो देखिए सीधी सी है चूंकि मेजॉरिटी पर ही स्थिर होती है सरकार। जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वो तो एक बात है लेकिन उसके पास बहुमत होना चाहिए, आधे से अधिक एमएलए होने चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी तो पार्टी थी लेकिन उसके पास बहुमत नहीं था, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी, दूसरे का वो समर्थन लेने की स्थिति में भी नहीं आ पाई होगी, तभी फिर बीजेपी ने कह दिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। अब गवर्नर क्या करते हैं? अब गवर्नर के पास फिर से दो विकल्प थे कि या तो अब दूसरी जो बड़ी पार्टी है उसको आमंत्रित करें या फिर कह दे कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो फिर से उन्होंने अपने विजडम का यहां उपयोग किया, विवेक का सही इस्तेमाल किया। उन्होंने दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी शिवसेना उसे कहा कि आप सरकार बनाइए। ठीक है, अब देखते हैं कि शिवसेना का क्या उत्तर होता है। अखबारों में आप पढ़ रहे हैं कि जो भी स्थितियां चल रही है, हालांकि उनके पास सदस्य बहुत कम है लेकिन दूसरी पार्टियों के सपोर्ट से वो चाहे तो सरकार बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा कर सकती थी लेकिन ये तो राजनीति है, पता नहीं कहां बात अटक जाती है, वो सब आप जानते भी हैं। तो यहां तक हम पहुंचे हैं, आगे अब जो भी स्थिति बनेगी उसके तहत हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जो दूसरी घटना है मित्रों वो है टीएन शेषन के निधन की। टीएन शेषन, तो सबसे पहले तो सच पूछिए तो इस महान प्रशासक को मैं अपने आप सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, अपनी पत्नी प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। ये श्रद्धांजलि मैं इसलिए अर्पित कर रहा हूं क्योंकि ये ठीक है प्रशासक रहे हैं, आईएएस ऑफिसर रहे हैं लेकिन लोकतंत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सच पूछिए तो व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं कहूं तो मेरा यह सौभाग्य भी रहा कि टीएन शेषन जी के द्वारा जो मीटिंग ली जाती थी उनमें से एक दो मीटिंग में जाने का मुझे अवसर भी मिला, तो वो दृश्य भी अभी मेरी आंखों के सामने है। या आप 1955 बैच के आईएएस ऑफिसर थे, तमिलनाडु आपका कैडर था, ये हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे हैं लेकिन कम समय के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी रहे, 9 महीने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी रहे और इसके बाद फिर इनको तुरंत जो है चुनाव आयुक्त बना दिया गया। और इनको जब चुनाव आयुक्त बनाया गया था उस समय आप ये समझ लीजिए कि जो लोकतंत्र की व्यवस्था थी वो कोई बहुत बेहतर नहीं थी। मतलब लोकतंत्र की जो मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं वो चुनाव को लेकर के, नो डाउट कि चुनाव फेयर होते थे, लेकिन चुनाव के समय में इतनी सारी धांधलियों की खबर आती थी कि वहां बैलेट पेपर्स बॉक्स लूट लिए गए हैं, दीवालें रंग जाती थी, खूब हल्ला गुल्ला होता रहता था, सारी चीजें होती थी। और जैसे पता लगता कि अब चुनाव होने वाले हैं तो सच में लोग सतर्क हो जाते थे कि अरे बाप रे, अब तो जो है ना पूरा का पूरा जो शहर है गांव है वो किसी पेंट में तब्दील हो जाएगा, यानी पेंटिंग पेंटिंग, यहां नारे वहां नारे। इनका जो सबसे बड़ा योगदान रहा है दोस्तों वो चुनाव आयुक्त के रूप में ही रहा है। जब ये चुनाव आयुक्त बने तब यूं कह लीजिए कि जो राजनीतिक दल थे वो कहा जाता है कि केवल दो लोगों से ही डरते थे, या तो भगवान से या टीएन सेशन से। उन्होंने ऐसे सिस्टम लागू किए कि पहली बार देश को ये पता लगा कि एक चुनाव आयुक्त में सच में इतनी ताकत है। और हमारे संविधान में बकायदे इसी तरह की व्यवस्थाएं की गई है कि अगर चुनाव आयुक्त चाहे तो एक नियम कानून के तहत चुनाव में जबरदस्त रूप से सुधार ला सकता है। और अगर आप चुनाव में सुधार ले आते हैं तो ये तो हमारे लोकतंत्र की गंगोत्री है, अगर आप इसको सुधार लेते हैं तो ये मान करके चलिए कि बाद में जो लोकतंत्र की गंगा बहेगी वो बिल्कुल प्रदूषित रहित रहे हो गंगा होगी, पवित्र गंगा होगी। इन्होंने अपने समय में बहुत से ऐसे कदम उठाए। इन्होंने साफ साफ घोषणा कर दी कि जो हमारे मतदाता हैं उनका वोटर आईडी बनाया जाना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर के चुनाव नहीं होगा। लोगों ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, तो उन्होंने कहा कि पॉसिबल है और आप देखिए क्या सबके पास वोटर आईडी है। इन्होंने बिल्कुल कह दिया कि दीवालें नहीं रंगी जाएंगी, कोई वहां नारेबाजी नहीं होगी, इस तरह से करके बहुत से इन्होंने सुधार किए। तो दोस्तों इसीलिए सच पूछे तो मैंने आप सबकी ओर से और अपनी ओर से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इनको सम्मान देने के रूप में फिर मैगसेस अवार्ड भी दिया गया। मैगसेस अवार्ड जो आपको मालूम है कि वो एशिया का नोबेल प्राइज नोबेल पुरस्कार माना जाता है। 1990 से लेकर के 1996 तक ये हमारे देश के चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कहना चाहिए, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। मित्रों एग्जामिनेशन की दृष्टि से, खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, मुझे नहीं लगता है कि टीएन सेशन जी पर कुछ पूछा जाएगा, लेकिन खासकर जो इनका योगदान रहा है और इनके माध्यम से जो लोकतंत्र को एक नई दिशा मिली या एक नया स्वरूप मिला, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा, चूंकि उसके बारे में मुझे थोड़ी सी चर्चा करनी थी इसीलिए मैंने इस विषय को उठाया। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मेरा जो मुख्य विषय है वो आप समझ ही चुके हैं, अयोध्या निर्णय के निहितार्थ। निहितार्थ का मतलब है कि जो अयोध्या में अभी जो अयोध्या पर जो निर्णय आया है उसका क्या मतलब है। तो यहां जिस मैं मतलब की बात कर रहा हूं उसका सीधा संबंध आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से है, यानी कि ये जो निर्णय रहा है आया है सिविल सर्विस में, यदि इस पर प्रश्न पूछे गए तो उन प्रश्नों के एंगल्स क्या होंगे, किन किन कोण से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां मैं आपको तीन चार एंगल देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि देखिए अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा है, कौन कौन सी उनकी मुख्य बातें रही हैं, इनको दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। आप सबने अखबारों में इसे बहुत ध्यान से पढ़ा है, और चूंकि ये मामला इतना अधिक महत्वपूर्ण था कि सबको उत्सुकता भी थी, तो ऐसे लोगों ने भी बड़े ध्यान से पढ़ा है जिनको सिविल सर्विस नहीं देनी है, और आपको तो देनी है तो आपने पढ़ा ही हुआ है, इसलिए उनके बारे में बताने का कोई महत्व मैं यहां नहीं समझ रहा हूं। महत्व है लेकिन मेरे बताने का कोई महत्व नहीं होगा। मैं अब कुछ आपको उस दिशा में ले जाना चाहूंगा जो जहां से प्रश्न हम निकाल सकते हैं। एक प्रश्न जो बनता है वो है कि न्यायालय ने जो इसमें निर्णय दिए हैं तो न्यायालय के निर्णय देने के आधार क्या रहे हैं, क्या वो न्यायालय पूरी तरह से तटस्थ होकर निर्णय दे सका है, क्या न्यायालय पर बहुसंख्यकों का दबाव रहा है, यह सोचने की बात है, कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, या कि जो उसने निर्णय दिए हैं वो पूरी तरह से जो उसके सामने साक्ष्य रहे हैं उनके आधार पर निर्णय दिए हैं, निर्णय के आधार क्या रहे हैं, इसके बारे में देखिए न्यायालय ने खुद भी कहा है और बाकायदे अखबारों में लिखे लिखे हुए हैं कि किन किन आधार पर दिए, जिसमें उन्होंने पुरातत्व के साक्ष्यों की बात कही गई कही है, जो दलीलें दी गई उनकी भी बातें कही गई हैं, यहां तक कि उन्होंने जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं या ट्रेवलर्स हैं जिनके संस्मरण हैं, जो यात्री यहां आए हैं उनके भी रेफरेंसेस को ध्यान में रखा है, पुराणों को भी ध्यान में रखा है, और यहां तक कि जो इससे जुड़ी हुई जो आस्थाएं हैं, जो परंपराएं हैं, और वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है उसको भी ध्यान में रखा है। तो यहां पर आप देखिए कि सारी चीजें एक साथ आ रही हैं, पुराण ग्रंथ मान्यताएं ट्रेडिशन वर्तमान सब कुछ को ध्यान में रख करके सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, ये आपको अपने दिमाग में रखनी है। दूसरी बात जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लग रही है वो ये है कि आप देखिए कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला था, बहुत ही संवेदनशील मामला, और उस संवेदनशील मामले पर न्यायालय ने निर्णय दिया। आप देखिए कि न्यायालय इससे पहले भी निर्णय देते आ रहे हैं, और सच पूछे तो कोई सही निर्णय नहीं दे पाए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को किस तरीके से पूरे देश ने सर माथे पर लिया है, मतलब पूरी तरह से उनके प्रति आस्था व्यक्त की है, निर्णय आने से पहले भी और निर्णय आने के बाद भी। और ये जो आस्था है, ये आस्था सबकी है, पूरे समाज की है, पूरे राष्ट्र की है, राष्ट्र के हर वर्ग की है, राष्ट्र के हर धार्मिक समुदायों की है, राष्ट्र के राजनीतिक दलों की है, राष्ट्र के समाज की है, सब सबने इसे स्वीकार किया है, और सबके मुंह पर एक ही शब्द था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आप उसे इस रूप में मत लीजिए कि इसको तो मानना ही है और नहीं मानेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं, जो समाज है वो जब रिएक्शन पर आता है तो अपने ढंग से रिएक्ट करता है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि बहुत ही पूरी, जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा कोई धार्मिक गुरु कोई बात कह रहा हो और जिसे हम पूरे सर झुकाकर स्वीकार कर रहे हों, कुछ इस तरह की आस्था सुप्रीम कोर्ट पर दिखाई दे रही है। मैं देखिए सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट पर आस्था की बात कर रहा हूं, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि हम पुनर्याचिका दायर करेंगे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं वो जो 5 एकड़ जमीन जो मस्जिद के लिए दी गई है वो सही नहीं है, कुछ समुदाय ये भी कह रहे हैं कि हमारे मन में कसक बनी हुई है। ठीक है, वो सारी चीजें हैं, अब कोई भी निर्णय ऐसा नहीं आ सकता कि सबको आप खुश कर दें, लेकिन इसके बावजूद सब में स्वीकार्य है। तो जब हम इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ ये ठीक नहीं हुआ, तो ये समीक्षा की बात है और समीक्षा करने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है, लेकिन इस समीक्षा के बावजूद जो सर्व स्वीकृति है वो बहुत बड़ी बात है। तो यहां हम न्यायालय की जो प्रतिष्ठा है, न्यायालय का समाज पर जो प्रभाव है, न्यायालय के प्रति जो लोगों की निष्ठा है, उसे हम देखते हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जो तीसरा जो बिंदु है मित्रों, वो हम प्रशासन को देखते हैं कि प्रशासन इस दौर में क्या कर रहा है, किस तरीके से प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं की, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो इस पर भी आपकी निगाह होनी चाहिए। अब देखिए प्रशासन क्या कर रहा है, जैसे ही ये पता लगा कि निर्णय, तो ये तो था ही कि 17 नवंबर से पहले पहले निर्णय आ जाएगा, क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस साहब अगले दिन रिटायर हो रहे थे, चूंकि वो हमारे बेंच के हिस्से थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो इससे पहले निर्णय आना था, तो सरकार भी सतर्क हो गई थी और काफी पहले से बकायदे प्रशासन चुस्त हो गई थी, ये पहली बात है, वो इंतजार नहीं कर रही थी, पहले खासकर अयोध्या के क्षेत्र में प्रशासन ने पहले से ही सतर्कता बरत ली थी, है ना, पुलिस फोर्स वहां लगा दी गई थी, आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई थी, जो सोशल मीडिया है उन सब पर निगाह रखी जा रही थी, ये सब आप अखबारों में पढ़ रहे थे। लेकिन उसके साथ ही साथ और क्या था, प्रशासन तो एक चीज हुई है ना, जिसके पास व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या प्रशासन अकेले ही सब कुछ कर सकता था, कर सकता है? अगर प्रशासन सब कुछ कर सकता होता तो फिर हमारे यहां बहुत से जो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम होते हैं वो नहीं हुए होते। लेकिन प्रशासन को भी आप देखिए कि किनका सपोर्ट चाहिए, राजनीतिक दलों का सपोर्ट सबसे ज्यादा मायने रखता है, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे तरीके से चले, लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे, तो सबसे बड़ी जरूरत होती है राजनीतिक दलों के समर्थन की। और अगर आप राजनीतिक दलों के समर्थन की बात कह रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि कुछ सीमा तक जनता के समर्थन की। आप देखिए कि सभी राजनीतिक दलों ने दो चीजें कही थी ये निर्णय आने से पहले, पहला यह कि जो भी निर्णय आएगा हमें स्वीकार्य होगा, दूसरा उन्होंने कहा कि देश में शांति और सौहार्द की स्थिति बनाए रखी जानी चाहिए, इसे हार और जीत के रूप में न लें कि कौन हारा कौन जीता, इस रूप में न लिया जाए। और देखिए कि उनके अपील का इतना जबरदस्त असर हुआ कि शांति बनी रही और प्रशासन को इससे बहुत अधिक मदद मिली। इसके बाद जो दूसरा है वो कह लीजिए समुदाय। समुदाय में इस रूप में कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि मैं राजनीतिक दल की बात को सुनूं ही, जरूरी नहीं है। मैं किसी राजनीतिक दल को उस तरीके से स्वीकार नहीं करता, मैं उसका सदस्य नहीं हूं, तो मैं एक समुदाय का हिस्सा हूं, या यूं कह लीजिए कि समाज का हिस्सा हूं। आप देखिए कि इसमें समाज ने भी पूरा साथ दिया, जो राजनीतिक दलों से सीधे जुड़े हुए नहीं थे उन्होंने भी कितनी सौहार्द और शांति बनाए रखी। और ये कोई जबरदस्ती की नहीं थी, ऐसा नहीं था कि पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस अपने ढंग से काम कर रही थी, पुलिस की गश्तें जारी थी, अपील की गई थी, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही थी, किसी भी अप्रत्याशित स्थिति को निपटने के लिए प्रशासन तैयार था। लेकिन जो समुदाय जो था, यानी कि जो समाज था, वो बकायदे धैर्य बनाए हुए था, अपना संतुलन बनाए हुए था। तो राजनीतिक दल और समुदायों के सपोर्ट ने प्रशासन को इतनी ताकत दी कि हम इसे प्रशासन की भी एक बहुत बड़ी सफलता मान सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एंगल्स मैंने आपके सामने रखे हैं जो मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से इन बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सभी देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम है संजीव गांधी पंजाब से, कमल नारायण, सतीश वर्मा, सुरेश, बैजनाथ प्रसाद साहू मुंबई से, और अनूप राज। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कल गजेटेड हॉलीडे है, तो कल डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, अब परसों ही आप सबसे मुलाकात हो सकेगी। तो कल के प्रकाश पर्व के लिए आप सबको बहुत बहुत पूर्व की शुभकामनाएं। ये जो प्रकाश है हम सबके विवेक का आधार बने, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और आप सबसे अब इजाजत भी चाहता हूं। नमस्कार।